अध्याय 64 दाऊद एक पलायक। ये अध्याय पहला शमूएल 18:22 पर आधारित है। गोलियत के मारे जाने पश्चात शाऊल ने दाऊद को अपने पास ही रखा और उसे उसके पिता के घर लौटने की अनुमति नहीं दी। और ऐसा हुआ कि योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राणों के समान प्रेम करने लगा। योनातन और दाऊद ने भाइयों जैसे एक होने की वाचा बौद्धी और राजा के पुत्र ने अपना बागा जो वो स्वयं पहने हुए था उतारकर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसे दे दिए। दाऊद को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे गए, लेकिन उसने अपनी विनम्रता को संरक्षित रखा और लोगों का और राजसी परिवार दोनों का प्रेम जीत लिया। और जहां भी शाऊल दाऊद को भेजता था वहां वो जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था, अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। दाऊद बुद्धिमान और ईमानदार था और ये प्रमाणित था कि परमेश्वर का आशीर्वाद उसके साथ था। शाऊल को कभी कभी एहसास होता था कि इज़राइल के शासन के लिए वो स्वयं अयोग्य है और उसे लगता था कि राज्य परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करने वाले के साथ जुड़े रहने में अधिक सुरक्षित रहेगा। शाऊल को आशा थी कि दाऊद के साथ उसका संबंध उसके लिए भी सुरक्षा होगा, क्योंकि दाऊद पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी और परमेश्वर उसकी ढाल था। युद्ध के समय वो शाऊल के लिए बचाव हो सकता था। ये परमेश्वर का प्रयोजन था जिसने दाऊद का संबंध शाऊल से जोड़ा था। ये उसे राष्ट्र का विश्वास प्राप्त करने के योग्य ठहराता। शाऊल की शत्रुता के माध्यम से जो कठिनाइयां उसके जीवन में आईं, उनसे उसने परमेश्वर पर निर्भर होना और अपना पूरा विश्वास उसमें रखना सीखा। दाऊद और योनातन की मित्रता भी इज़राइल के भावी राजा के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर की योजना थी। इन सभी बातों में परमेश्वर दाऊद और इज़राइलियों के लिए अनुग्रहकारी उद्देश्य कार्यान्वित कर रहा था। लेकिन शाऊल ज्यादा दिनों तक दाऊद के प्रति मित्रवत नहीं रहा। जब शाऊल और दाऊद पलिश्तियों से युद्ध करके लौट रहे थे, तब स्त्रियां सब इज़राइली नगरों से नाचती और गाती हुई प्रसन्नतापूर्वक डफ और वाद्य यंत्रों के साथ शाऊल राजा के स्वागत के लिए निकलकर आईं। एक समूह ने गाया, शाऊल ने तो हजारों को मारा, और दूसरे समूह ने राग को पकड़ते हुए जवाब दिया, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। ईर्ष्या की दुष्टात्मा ने राजा के हृदय में प्रवेश किया। वो क्रोधित हुआ क्योंकि इज़राइल की स्त्रियों के गीत में दाऊद की उससे अधिक प्रशंसा की गई थी। इन द्वेषपूर्ण भावनाओं को दबाने के बजाय उसने अपने चरित्र की कमजोरी का प्रदर्शन किया और वो बोला, उन्होंने दाऊद के लिए लाखों और मेरे लिए हजारों को ही ठहराया, इसलिए राज्य को छोड़ अब उसे और क्या मिलना बाकी है। अनुमोदन या प्रशंसा की चाह शाऊल के चरित्र का सबसे बड़ा दोष था। इस गुण का उसके विचारों और कृत्यों पर नियंत्रणकारी प्रभाव था। हर चीज प्रशंसा और आत्म उत्थान की अभिलाषा से चिन्हित थी। लोकप्रिय वाहवाही का निम्न स्तर सही और गलत का उसका स्तर था। जो मनुष्य को प्रसन्न रखने के लिए जीता है वो मनुष्य सुरक्षित नहीं रहता और वो परमेश्वर की प्रशंसा को पहला स्थान नहीं देता। शाऊल मनुष्य के अनुमान में प्रथम होने का महत्वाकांक्षी था, और जब ये प्रशंसा गीत गाया गया शाऊल के मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि दाऊद लोगों का मन जीत लेगा और उसके स्थान पर राज करेगा। शाऊल ने ईर्ष्या की भावना को अपने हृदय में स्थान दिया जिससे उसकी आत्मा विषाक्त हो गई। भविष्यद्वक्ता शमूएल ने उसे शिक्षा दी थी कि परमेश्वर जो चाहता है वो करता है और उसे कोई नहीं रोकता, लेकिन इसके बावजूद शाऊल ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसे परमेश्वर की योजनाओं या सामर्थ्य का सच्चा ज्ञान नहीं था। इज़राइल का राजा अपनी इच्छा को सनातन परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध खड़ा कर रहा था। इज़राइल राज्य पर राज करते हुए शाऊल ने अपनी स्वयं की भावना को नियंत्रित करना नहीं सीखा था। उसने अपने निर्णय को अपने आवेग द्वारा तब तक नियंत्रित होने दिया जब तक कि वो आवेग की आग में न कूद पड़ा। उसे क्रोध के दौरे पड़ते थे जब वो उसकी इच्छा का विरोध करने वाले की जान लेने को तैयार हो जाता था। इस पागलपन से वो निराशा और आत्म अवमानना की अवस्था में आ जाता और पश्चाताप उसकी आत्मा पर हावी हो जाता।
उसे दाऊद का वीणा वादन सुनना अच्छा लगता था और उस समय के लिए दुष्टात्मा उससे दूर हो जाती थी। लेकिन एक दिन जब नौजवान उसकी सेवा टहल कर रहा था और अपनी वीणा के मधुर संगीत के साथ परमेश्वर की स्तुति में गीत गा रहा था, शाऊल ने अचानक से संगीतज्ञ पर अपना भाला दे मारा। उसका उद्देश्य दाऊद की जान लेना था। परमेश्वर के हस्तक्षेप से दाऊद सुरक्षित रहा और बिना घायल हुए झुंझलाए हुए राजा के कोद से बचने के लिए भाग गया। जैसे जैसे शाऊल की दाऊद के प्रति नफरत बढ़ती गई, वो उसकी जान लेने के अवसर को ढूंढने के लिए और भी अधिक सतर्क हो गया। लेकिन परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त के विरुद्ध उसकी कोई भी योजना सफल नहीं हुई। शाऊल ने स्वयं को उस पर अधिकार करने वाली दुष्टात्मा के नियंत्रण में दिया, जबकि दाऊद उसमें विश्वास रखता था जो सम्मति देने में सामर्थ्यवान है और बचाकर निकाल लाने में बलवंत है। नीति वचन 9 आयत 10 में लिखा है, प्रभु का भय ज्ञान की शुरुआत है, और दाऊद परमेश्वर से लगातार उसके आगे आगे चलने की प्रार्थना करता था। अपने प्रतिद्वंद्वी की उपस्थिति से मुक्त होने की इच्छा से राजा ने उसे अपने पास से हटाकर 1,000 से भी अधिक के ऊपर योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। लेकिन संपूर्ण इसराइल और यहूदा दाऊद से प्रेम करते थे। लोगों ने शीघ्र ही भांप लिया कि दाऊद एक सक्षम व्यक्ति था और ये कि उसके हाथों के सुपुर्द किए कार्यों को वो बुद्धिमानी और कौशल से प्रबंधित करता था। नवयुवक के परामर्श प्रबुद्ध और विवेकशील थे और अनुकरण के लिए सुरक्षित प्रमाणित हुए, जबकि शाऊल के निर्णय कभी कभी अविश्वसनीय और अविवेकी होते थे। हालांकि शाऊल दाऊद को नष्ट करने के अवसर के लिए हमेशा सतर्क रहता था, वो उससे डरता भी था, क्योंकि ये स्पष्ट था कि प्रभु उसके साथ था। दाऊद के दोष रहित चरित्र ने राजा के क्रोध को जागृत किया। उसने मान लिया कि दाऊद की उपस्थिति व जीवन ही उसके लिए तिरस्कार थे, क्योंकि तुलना किए जाने पर उसका अपना चरित्र तुच्छ प्रतीत होता था। इसी ईर्ष्या ने शाऊल को दयनीय बना दिया और उसके सिंहासन के विषय को संशय में डाल दिया। चरित्र के इस दोष ने हमारे संसार में कितना अनकहा अनर्थ किया है। जिस शत्रुता ने कैन के हृदय को उसके भाई हाबिल के विरुद्ध कर दिया, क्योंकि हाबिल के कार्य धर्म के थे और परमेश्वर ने उसका मान रखा, और उसके अपने कार्य बुराई के थे जिसके कारण प्रभु ने उसे आशीषित नहीं किया, वही शत्रुता शाऊल के हृदय में विद्यमान थी। ईर्ष्या अभिमान की संतान है, और यदि इसे बढ़ावा दिया जाता है तो ये घृणा और अंततः प्रतिशोध और हत्या की ओर ले जाती है। शाऊल के क्रोध को उसके विरुद्ध उत्तेजित करने में, जिसने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई थी, शैतान ने अपने निज चरित्र का प्रदर्शन किया। राजा ने दाऊद पर कड़ी निगरानी रखी। विवेकहीनता या उतावलेपन के किसी अवसर की आशा में, जिसे वो उसका अपमान करने के लिए बहाने के रूप में उपयोग कर सकता था, उसे लगा कि वो तभी संतुष्ट होगा जब नौजवान के प्राण ले लेगा और उसके बावजूद अपने दुष्कर्म के लिए प्रजा के सम्मुख न्यायसंगत ठहराया जाएगा। उसने दाऊद से पलिश्तियों के विरुद्ध और अधिक शक्ति के साथ युद्ध करने का आग्रह कर और उसकी बहादुरी के लिए पारितोषिक के रूप में राजघराने की ज्येष्ठ पुत्री का विवाह उसके साथ करने की प्रतिज्ञा कर उसके लिए एक जाल बिछाया। इस प्रस्ताव पर दाऊद ने कहा, मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है, और इसराइल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं? राजा ने अपनी पुत्री का विवाह किसी अन्य पुरुष से करवाकर अपनी निष्ठाहीनता प्रकट की। शाऊल की सबसे छोटी बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी, जिससे शाऊल को अपने प्रतिद्वंद्वी भी विरुद्ध षड्यंत्र रचने का एक और अवसर मिल गया। मीकल का हाथ दाऊद के हाथ में देने का प्रस्ताव रखा गया, और शर्त ये थी, उसे राष्ट्र के शत्रुओं की एक निर्धारित संख्या की पराजय व हत्या का प्रमाण देना था। शाऊल की योजना थी कि पलिश्तियों से दाऊद को मरवा डाले, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास की रक्षा की। दाऊद राजा का दामाद बनने के लिए युद्ध में विजयी होकर लौटा। शाऊल की पुत्री मीकल उससे प्रीति रखती थी, और क्रोधित राजा ने देखा कि उसका षड्यंत्र उसके उत्थान में परिणामित हुआ, जिसे वो नष्ट करना चाहता था। उसका इस बात में विश्वास और दृढ़ हो गया कि दाऊद ही वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने उससे उत्तम कहा था,
और जो उसके स्थान पर इज़राइल के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। अपना मुखौटा उतारकर उसने योनातन और दरबार के अधिकारियों को अपनी घृणा के पात्र दाऊद को मार डालने का आदेश दिया। योनातन ने दाऊद को राजा के प्रयोजन से अवगत कराया और उसे तब तक छुपने को कहा जब तक वो अपने पिता से इज़राइल को छुटकारा दिलाने वाले के प्राण न लेने की विनती करे। योनातन ने राजा के सम्मुख राष्ट्र का अस्तित्व और सम्मान संरक्षित करने में दाऊद का योगदान प्रस्तुत किया और उस जघन्य अपराध के बारे में भी कहा जिसका दोषी वो होगा जो उस व्यक्ति की हत्या करेगा जिसका परमेश्वर ने शत्रुओं को तितर बितर करने के लिए उपयोग किया था। राजा का अंतःकरण प्रभावित हुआ और उसका हृदय नम्र हुआ। तब शाऊल ने शपथ ली, यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला ना जाएगा। दाऊद को शाऊल के पास लाया गया और वो पहले की तरह उसके सामने रहकर उसकी सेवा टहल करने लगा। तब इसराइलियों और पलिश्तियों के बीच युद्ध फिर से होने लगा और दाऊद ने शत्रुओं के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया। इब्रियों की बहुत बड़ी विजय हुई और राज्य के लोगों ने दाऊद की बुद्धिमत्ता और वीरता की प्रशंसा की। इस कारण दाऊद के प्रति शाऊल की पहले वाली कड़वाहट उभर आई। जब नौजवान राजा के सम्मुख वीणा वादन कर महल को मधुर संगीत से भर रहा था, शाऊल का जुनून उस पर हावी हो गया और उसने दाऊद पर भाला फेंका, ये सोचकर कि भाला उसे बेधता हुआ दीवार में धस जाएगा। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उस घातक हथियार की दिशा बदल दी। दाऊद बचकर निकल गया और अपने घर भाग गया। शाऊल ने गुप्तचरों को भेजा जिससे कि प्रातःकाल को जब वो बाहर निकलकर आए तो वे उसे पकड़ लें और उसका जीवन समाप्त कर दें। मीकल ने दाऊद को अपने पिता के उद्देश्य के बारे में सूचित किया। उसने दाऊद से आग्रह किया कि वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भाग जाए और उसने उसे खिड़की के रास्ते नीचे उतारा ताकि वो भाग सके। वो भागकर रामा में शमूएल के पास गया और भविष्यद्वक्ता ने पलायक का स्वागत किया क्योंकि उसे राजा की अप्रसन्नता का डर नहीं था। राजमहल की तुलना में शमूएल का घर एक शांत स्थान था। यहां पर पहाड़ के बीच प्रभु द्वारा सम्मानित दास ने अपना कार्य चालू रखा। भविष्यद्वक्ताओं का एक समूह उसके साथ था और उन्होंने परमेश्वर की इच्छा का गहन अध्ययन किया और शमूएल के मुख से निकलने वाले निर्देशों के शब्दों को श्रद्धापूर्वक सुना। इज़राइल के शिक्षक से प्राप्त शिक्षा दाऊद के लिए अनमोल थी। दाऊद को विश्वास था कि शाऊल की सेना को इस पवित्र जगह पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस क्रोधित राजा के प्रकाशहीन मन को कोई स्थान पवित्र नहीं लगता था। दाऊद के साथ शमूएल के संबंध ने शाऊल की ईर्ष्या को जागृत किया, ये सोचकर कि संपूर्ण इज़राइल में परमेश्वर भविष्यद्वक्ता के रूप में श्रद्धा प्राप्त के प्रभाव से उसके प्रतिद्वंद्वी की उन्नति होती। जब राजा को पता चला कि दाऊद कहाँ है, उसने अपने अधिकारियों को भेजकर उसे गिबा लाने को कहा, जहां वो उसे मरवा डालना चाहता था। दूत दाऊद के प्राण लेने के अभिप्राय से वहां से गए, लेकिन शाऊल से जो महान था अर्थात परमेश्वर ने उन्हें नियंत्रित किया। रास्ते में उनका सामना अदृश्य स्वर्गदूतों से हुआ, जैसा कि इज़राइल को श्रापित करने जाते समय बिलाम के साथ हुआ था। वे भविष्य में घटित होने वाले भविष्य सूचक कथनों का उच्चारण करने लगे और उन्होंने यहोवा के तेजस्वर और गौरव की घोषणा की। परमेश्वर ने मनुष्य के क्रोध का खंडन किया और बुराई को बाधित करने के उसके सामर्थ्य को प्रकट किया और अपने दास को स्वर्गदूतों की सुरक्षा के घेरे में रखा।
दाऊद को अधिकृत करने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था जब उसे सूचना मिली, लेकिन परमेश्वर की फटकार का आभास होने की बजाय वह और भी भड़क गया और उसने अन्य दूत भेजे। इन्हें भी परमेश्वर के आत्मा ने अपने वश में किया और वे भी पहले वाले दूतों की तरह भविष्यद्वाणी करने लगे। राजा ने तीसरा दूतगण भेजा, लेकिन भविष्यद्वक्ताओं की संगत में आकर वे भविष्यद्वाणी करने लगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रभाव उन पर भी हुआ।
शाऊल ने स्वयं जाने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी भयानक शत्रुता अदम्य हो गई थी। वह दाऊद को मारने के लिए एक और अवसर के लिए न रुकने के लिए संकल्पित था। वह चाहता था कि जैसे ही दाऊद उसकी पहुंच में आए, परिणाम की चिंता किए बगैर वह उसे मार डाले। लेकिन रास्ते में उसका सामना एक स्वर्गदूत से हुआ, जिसने उसे नियंत्रित किया। परमेश्वर के आत्मा ने उसे अपनी शक्ति में जकड़ लिया और वह परमेश्वर से प्रार्थना करता हुआ आगे भड़ग्य और बीच बीच में भविष्यवाणी करता गया और पवित्र धुन गुनगुनाता गया। उसने मसीह के संसार के उद्धारकर्ता के रूप में आने की भविष्यद्वाणी की। जब वह रामा में शामुएल के घर आया, उसने अपने पद की प्रतीकात्मक बाहरी वस्त्र अलग रखे और दिन भर पवित्र आत्मा के प्रभाव में शामुएल और उसके शिष्यों के आगे लेटा रहा। लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हो गए और राजा के अनुभव का वृतांत सब जगह सुनाया गया। इस प्रकार फिर से उसके राज के समाप्त होने के समय इज़राइल में यह लोकोक्ति बन गई कि शाऊल भी भविष्यद्वक्ताओं की श्रेणी में था। एक बार फिर सताने वाला अपने प्रयोजन में विफल रहा। उसने दाऊद को आश्वस्त किया कि उसके प्रति उसकी कोई शत्रुता नहीं, लेकिन दाऊद को राजा के पश्चाताप में थोड़ा ही विश्वास था। अवसर पाते ही वह बच निकला, इस डर से कि कहीं राजा की मनोदशा बदलकर पहले सी न हो जाए। उसका हृदय उसके भीतर घायल हो गया और वह योनातन को एक बार देखने के लिए तड़प उठा। अपने निर्दोष होने के प्रति सचेत वह राजा के पास गया और उसने एक भावुक निवेदन किया। उसने पूछा, मैंने क्या किया है? मुझसे क्या पाप हुआ? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राण लेने की ताक में रहता है? योनातन का विश्वास था उसके पिता ने अपना लक्ष्य बदल लिया था और अब वह दाऊद के प्राण नहीं लेना चाहता था। और योनातन ने दाऊद से कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा न जाएगा। सुन, मेरा पिता मुझको बिना बताए न तो कोई बड़ा काम करता है और न कोई छोटा, फिर वह ऐसी बात को मुझसे क्यों छिपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। परमेश्वर की शक्ति के इतने अपूर्व प्रदर्शनों के पश्चात योनातन को अपने पिता द्वारा दाऊद को हानि पहुंचाए जाने का विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा करना परमेश्वर के प्रति विरोध प्रकट करता। लेकिन दाऊद को विश्वास न था। अत्यंत गंभीरता से उसने योनातन से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, निस्संदेह मेरे और मृत्यु के बीच डग भर का ही अंतर है। नए चांद के समय इज़राइल में एक पवित्र पर्व मनाया जाता था। यह पर्व योनातन और दाऊद के साक्षात्कार के अगले दिन पड़ा। इस भोज पर दोनों नौजवानों को राजा की मेज पर उपस्थित होने की अपेक्षा थी, लेकिन दाऊद उपस्थित होने से डर रहा था और इसलिए यह प्रबंध किया गया कि दाऊद बेतलहम में अपने भाइयों से मिलने जाए। लौटने पर उसे भोजस्थल से कुछ ही दूरी पर खेत में 3 दिनों तक राजा की दृष्टि से छिपे रहना था और योनातन को इस बात का शाऊल पर प्रभाव को देखना था। यदि यिशै के पुत्र के ठौर ठिकाने के बारे में पूछताछ हो तो योनातन को कहना था कि वह अपने पिता के कुल द्वारा बलि की विधि में उपस्थित होने के लिए गया था। यदि राजा क्रोध प्रकट न करके कहे ठीक है, तो दाऊद का दरबार में आना सुरक्षित था। लेकिन यदि वह उसकी अनुपस्थिति पर क्रोधित हो तो यह दाऊद के लिए भाग जाने का चिन्ह होगा। भोज के प्रथम दिन राजा ने दाऊद की अनुपस्थिति के बारे में कोई पूछताछ नहीं की, लेकिन जब दूसरे दिन भी उसका स्थान खाली देखा तो उसने पूछा, क्या कारण है कि यिशै का पुत्र न तो कल भोजन पर आया था और न आज ही आया है? योनातन ने शाऊल को उत्तर दिया कि दाऊद ने बेतलहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है और मेरे भाई ने मुझको उपस्थित होने की आज्ञा दी है, और यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट कर आऊं। इसी कारण वो राजा की मेज पर नहीं आया। जब शाऊल ने यह सुना, उसका क्रोध आपे से बाहर हो गया। उसने घोषणा की कि जब तक दाऊद जीवित रहेगा, योनातन इज़राइल के सिंहासन पर नहीं बैठे, और उसे दाऊद को तुरंत बुलवाने का आदेश दिया ताकि उसे मृत्यु के घाट उतारा जा सके। वो क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है?
राजा से की गई विनती ने उसके कोध में भी शैतानी बना दिया, और जिस भाले से वो दाऊद को बेधना चाहता था उसने वही भाला अपने ही पुत्र पर दे मारा। राजपुत्र दुखित होकर क्रोध में राजा की उपस्थिति से चला गया और भोज में अतिथि ना रहा। उसकी आत्मा दुख के बोझ से भारी थी। जब वो नियत समय पर उस स्थल पर पहुंचा जहां दाऊद को उसके प्रति राजा के प्रयोजनों की जानकारी मिलनी थी, दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। राजा के आवेग के अंधेपन ने नौजवानों के जीवन पर काली छाया सी डाल दी और उनके दुख की गहराई अवर्णनीय थी। जब वे अलग अलग रास्तों पर जाने के लिए अलग हुए, योनातन के अंतिम शब्द दाऊद के कानों में पड़े, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से ये कहकर यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। राजा का पुत्र गिबा को लौट गया और दाऊद शीघ्रता से कुछ ही मील की दूरी पर बिन्यामीन के गोत्र के नगर नोब पहुंचा। मिलाप वाले तंबू को शीलो से इस स्थान पर लाया गया था और यहां पर महायाजक अहीमेलेक पुरोहिती करता था। दाऊद नहीं जानता था कि परमेश्वर के दास के अलावा वो शरण के लिए किसके पास भाग कर जाए। जब दाऊद चेहरे पर दुख और चिंता के भाव लिए अकेला और जल्दी में महायाजक के पास आया तो वो उसे अचरज से देखने लगा। उसने दाऊद से वहां आने का कारण पूछा। नौजवान में पकड़े जाने का भय बना हुआ था और इस परम संकट में उसने झूठ का सहारा लिया। उसने महायाजक से कहा कि उसे राजा द्वारा एक गुप्त कार्य के लिए भेजा गया था और इस कार्य को अत्यंत शीघ्रता से किया जाना था। यहां पर उसने परमेश्वर में उसके विश्वास की कमी दिखाई और उसके पाप के कारण महायाजक की मृत्यु हो गई। यदि तथ्यों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया होता, अहीमेलेक को ज्ञात होता कि उसके जीवन की सुरक्षा के लिए कौन सा रास्ता अपनाना था। परमेश्वर बड़े से बड़े खतरे में भी अपने लोगों से सत्यनिष्ठा की अपेक्षा करता है। दाऊद ने याजक से 5 रोटी मांगी। परमेश्वर के दास के पास पवित्र रोटी को छोड़ और कुछ न था, लेकिन दाऊद उसका संदेह दूर करने में सफल रहा और अपनी भूख शांत करने के लिए उसने रोटी प्राप्त कर ली। अब एक नया खतरा सामने आया। शाऊल के चरवाहों का मुखिया दोएग, जो इब्रियों के विश्वास को मानता था, आराधना के स्थान पर अपनी शपथ पूरी करने आया। दोएग को देखते ही दाऊद ने शीघ्र ही शरण के लिए कोई अन्य स्थान सुरक्षित करने का और बचाव की आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार प्राप्त करने का संकल्प किया। उसने अहीमेलेक से तलवार मांगी और उससे कहा गया कि उसके पास गोलियत की तलवार के अलावा दूसरी तलवार न थी और उसने वो पवित्र स्थान में स्मारक के रूप में रखी थी। दाऊद ने उत्तर दिया, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। जिस तलवार का उपयोग उसने पलिश्तियों के शूरवीर को नष्ट करने में किया था, उसे हाथ में पकड़ते ही उसका साहस पुनः उत्पन्न हो गया। वहां से भागकर दाऊद गत के राजा आकीश के पास गया, क्योंकि उसे लगता था कि शाऊल के अधिकृत क्षेत्र से अधिक वो अपने लोगों के शत्रुओं के बीच सुरक्षित था। लेकिन आकीश को सूचित किया गया कि दाऊद वही व्यक्ति था जिसने वर्षों पूर्व पलिश्ती शूरवीर को मार डाला था और अब जिसने इज़राइल के शत्रुओं से शरण मांगी थी, उसने स्वयं को खतरे में पाया। लेकिन पागलपन का ढोंग करते हुए उसने अपने शत्रुओं को धोखा दिया और वहां से बचकर निकल गया। दाऊद की पहली गलती थी कि उसने नोग में परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, और उसकी दूसरी गलती आकीश के सम्मुख उसका धोखा था। दाऊद ने अपने चरित्र की उत्कृष्ट विशेषताओं का प्रदर्शन किया था और उसकी नैतिकता ने उसे लोकप्रिय बनाया था, लेकिन जब उस पर विपत्ति आई, उसका विश्वास हिल गया और उसकी मानुषिक कमजोरी सामने आ गई। वह प्रत्येक व्यक्ति में एक धोखेबाज और गुप्तचर देखता था। एक घोर संकट के समय दाऊद ने परमेश्वर की ओर विश्वास की दृष्टि डाली थी और पलिश्ती राक्षस को नष्ट कर दिया था। वह परमेश्वर में विश्वास करता था और उसके नाम से आगे बढ़ा, लेकिन जब उसका पीछा किया गया और उसे सताया गया, दुविधा और दुख ने उसकी दृष्टि से स्वर्गीय पिता को दूर कर दिया। लेकिन यह अनुभव दाऊद को बुद्धिमान बना रहा था, क्योंकि इसने उसको उसकी कमजोरी का और परमेश्वर पर अपनी स्थायी निर्भरता की आवश्यकता का एहसास कराया। निराश और खिन्न आत्माओं पर परमेश्वर के आत्मा का मीठा प्रभाव कितना अनमोल है, जो हतोत्साहितों को प्रोत्साहित करता है, निर्बल को बलवंत बनाता है और परमेश्वर के परखे हुए दासों को साहस और सहायता प्रदान करता है। कितना महान है हमारा परमेश्वर जो दोषियों के साथ नम्रता से व्यवहार करता है, और कठिनाई में जब हम अत्यंत दुखी हो जाते हैं वो अपनी धैर्यशीलता और नम्रता प्रकट करता है। परमेश्वर की संतान की ओर से प्रत्येक विफलता उनमें विश्वास की कमी के कारण होती है। जब हमारी आत्मा को अंधकार की परछाइयां घेर लेती है, जब हमें मार्गदर्शन और प्रकाश की आवश्यकता होती है, हमें ऊपर की ओर देखना चाहिए। अंधकार के परे प्रकाश होता है। दाऊद को एक क्षण के लिए भी परमेश्वर में अविश्वास नहीं दिखाना चाहिए था। उसके पास परमेश्वर में विश्वास करने का कारण था। वो प्रभु का अभिषिक्त था और खतरों के बीच उसकी सुरक्षा स्वर्गदूतों द्वारा की गई थी। वो अद्भुत कार्य करने के लिए साहस के हथियार से लैस था, और यदि वो अपने मन से उस कठिन परिस्थिति को निकाल देता जिसमें उसे डाला गया था और परमेश्वर के सामर्थ्य और तेज पर विचार करता, तो वो मृत्यु की परछाइयों के मध्य भी शांति से रहता। उसे विश्वास के साथ परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को दोहराना चाहिए था, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका वही वचन है। यशाया 54:10। यहूदा के पहाड़ों के बीच शाऊल द्वारा उसका पीछा किए जाने से शरण प्राप्त की। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया, जो ऐसा स्थान था जहां से एक छोटी सी सेना एक विशाल सेना के विरुद्ध खड़ी रह सकती थी। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया। यह जानते हुए कि दाऊद के उनके साथ संबंध के कारण किसी भी समय शाऊल के निराधार संदेह उनकी ओर निर्देशित हो सकते थे, दाऊद का परिवार सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता था। अब उन्हें ज्ञात हो चुका था, जो इसराइल में सार्वजनिक तौर पर ज्ञात होने को था, कि परमेश्वर ने अपने लोगों के भावी शासक के रूप में दाऊद को चुना था, और उन्हें विश्वास था कि उसके एक एकांत गुफा में पलायक होने के बावजूद वे एक ईर्ष्यालु राजा के विवेक शून्य पागलपन के समक्ष होने से अधिक उसके साथ सुरक्षित होंगे। अदुल्लाम की गुफा में वे प्रेम और करुणा में एक हो गए। यिशै का पुत्र अपनी आवाज और वीणा से मधुर संगीत उत्पन्न करता और गाता, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मित्र रहे हैं। भजन संहिता 133:1। उसने अपने ही भाइयों के अविश्वास की करवाहट को चखा था, और असामंजस्य का स्थान लेने वाले सामंजस्य ने पलायक के हृदय को प्रसन्न किया। यहां पर दाऊद ने 57वां भजन लिखा। कुछ ही समय में वे लोग भी दाऊद की टोली के साथ जुड़ गए, जो राजा की बलपूर्वक वसूली से बचाना चाहते थे। कई ऐसे थे जिनका इसराइल के राजा पर से विश्वास उठ गया था, क्योंकि वे देख सकते थे कि उसे प्रभु के आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं था, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वो उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। यहां दाऊद के पास अपना छोटा सा राज्य था और उसमें व्यवस्था और अनुशासन प्रचलित था, लेकिन पहाड़ों के इस विश्राम स्थल में भी वो सुरक्षित महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसे लगातार प्रमाण मिलते थे कि राजा ने उसकी हत्या का प्रयोजन समाप्त नहीं किया था। उसने मोआब के राजा के पास अपने माता पिता के लिए शरण स्थान ढूंढा, और फिर परमेश्वर के एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा खतरे की चेतावनी पाकर वो अपने छुपने के स्थान से निकलकर हेरेत के जंगल में चला गया। जिस अनुभव से दाऊद गुजर रहा था वो अनावश्यक या व्यर्थ नहीं था। परमेश्वर उसे एक बुद्धिमान योद्धा और एक न्यायसंगत व दयालु राजा बनने के सुयोग्य करने की शिक्षा दे रहा था। पलायकों की टोली के साथ वो शाऊल के कार्यभार को लेने की तैयारी प्राप्त कर रहा था, क्योंकि शाऊल अपने हिंसक आवेग और अंधी मूर्खता के कारण सरासर अयोग्य हो रहा था। परमेश्वर की सम्मति से दूर होकर वो उस बुद्धिमत्ता और धीरता को कायम नहीं रख सकता जो उसे न्यायसंगत और बुद्धिमानी से कार्य करने के योग्य बनाते हैं। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता द्वारा अनियंत्रित मनुष्य की बुद्धिमत्ता का अनुसरण करने से बढ़कर भयानक और निराशाजनक कोई भी मूर्खता नहीं हो सकती। शाऊल दाऊद को अदुल्लाम की गुफा में जाल में फंसाकर बंदी बनाने की तैयारी कर रहा था। और जब पता चला कि दाऊद ने अपना शरण स्थान छोड़ दिया है, राजा अत्यंत क्रोधित हुआ। दाऊद का पलायन शाऊल के लिए रहस्य था। उसे विश्वास हो गया कि उसकी छावनी में देशद्रोही थे, जिन्होंने यिशै के पुत्र को उसके षड्यंत्र और निकटता की सूचना दी थी। उसने अपने प्रधानों को इस बात की पुष्टि की कि उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया था, और उसने उन्हें सम्मानीय पद और मूल्यवान उपहारों की भेंट की घूस देकर उनसे दाऊद की सहायता करने वालों के नाम जानने का प्रयत्न किया। एदोमी दोएक भेदिया बन गया। महत्वाकांक्षा और लालच और उसके पापों की निंदा करने वाले याजक के प्रति घृणा से प्रभावित होकर दोएग ने दाऊद की अहीमेलेक से भेंट करने की सूचना दी और इस बात को ऐसे प्रस्तुत किया जिससे परमेश्वर के दास के प्रति शाऊल का क्रोध भड़क उठा। उस हानिप्रद जीभ के नरक की आग से प्रज्वलित शब्दों ने शाऊल के हृदय के सबसे बुरे आवेग को उत्पन्न किया। क्रोध में पागल होकर उसने घोषणा की कि याजक के संपूर्ण परिवार को नष्ट कर दिया जाए, और उस भयानक आज्ञा का पालन किया गया। केवल अहीमेलेक ही नहीं, वरन उसके पिता के घराने के सन के वस्त्र का एपोद पहने हुए 85 पुरुषों का राजा के आदेश पर दोएक के हत्यारे हाथों द्वारा घात किया गया, और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीतों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मार डाला। ये था वो जो शाऊल शैतान के नियंत्रण में होकर कर सकता था। जब परमेश्वर ने कहा था कि अमालेकियों के पापों का घड़ा भर चुका था और उसने उन्हें पूर्णतया नष्ट करने की आज्ञा दी थी, तो शाऊल ने विनाश किए जाने वालों पर तरस खाकर उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन अब परमेश्वर की आज्ञा के बिना शैतान के मार्गदर्शन में उसने परमेश्वर के याजकों को मरवा डाला और नोब वासियों का विनाश किया। परमेश्वर के मार्गदर्शन को अस्वीकार करने वाले मानुषिक हृदय की विकृति ऐसी होती है। इस कृत्य ने समस्त इज़राइल को भयभीत कर दिया। ये अत्याचार उस राजा ने किया था जिसे उन्होंने चुना था, और ये उसने परमेश्वर का भय न मानने वाले राज्यों के राजाओं की तरह किया था। पवित्र संदूक उनके पास था, लेकिन जिन याजकों से उन्होंने पूछताछ की थी वे तलवार से मार डाले गए थे। आगे क्या होना था?